समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। दोस्तों, कई बार आप जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां आप जीवन के हर फैसले पर सवाल करने लगते हैं। आपके काम बनने से ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और आप हर चीज तोल मोल कर करते हैं। पर दोस्तों, जिंदगी तोल मोल कर जीने का नाम तो नहीं है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हालात जैसे भी हों, हमें उम्मीद नहीं हारनी, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और किसी ने खूब ही कहा है कि मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। और इसी उम्मीद न हारने के जज्बे के साथ शुरुआत कर रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे की, जिसमें आप जुड़ चुके हैं सर फिरोजी के साथ। और प्रोग्राम के इस अंक में हैं मेरे साथ मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
गुड मॉर्निंग सर फिरोजी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड थैंक यू सर फिरोजी फॉर दैट वेरी पॉजिटिव थॉट अर्ली इन द मॉर्निंग। सो हियर डियर लिसनर्स, वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू आर फॉर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड to this day, that is the 24th of June. So let's begin with the headlines. The first session of the 18th Lok Sabha will begin from today. During the session, the oath and affirmation of newly elected members will take place. Senior BJP MP Bhartruhari Mahatab, who has been appointed as the pro tem speaker, will administer the oath to the newly elected Lok Sabha members. The election of the new Lok Sabha speaker will be held on Wednesday, while President Draupadi Murmu will address the joint sitting of both houses of parliament on Thursday. The session of the Rajya Sabha will commence on Thursday. The parliament session will conclude on the 3rd of next month.
गृहमंत्री अमित शाह ने मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग को बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए नदियों के जलस्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत बनाने का निर्देश दिया। श्री शाह ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने देश में बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए एक व्यापक और दूरगामी नीति का कार्यान्वयन करने संबंधी दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। श्री शाह ने निर्देश दिया कि मौसम विभाग द्वारा बिजली चमकने के पूर्वानुमानों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एसएमएस, टीवी, एफएम रेडियो और अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने जंगल की आग की घटनाओं को रोकने संबंधी सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी निर्देश दिए।
Union Minister of Coal and Mines G. Kishan Reddy and Minister of State for Coal and Mines Satish Chandra Dubey will launch the fourth tranche of auction of critical and strategic mineral blocks today in New Delhi. The ministry said that the occasion will also include handing over of certificates to two notified private exploration agencies. It further said that to increase the efficiency in extraction of mineral resources and in its conversion into viable economic alloys and metals, sanction letters of grant will be handed over to startups and research and development institutes. Scheme for partial reimbursement of exploration expenses by exploration license holders is also scheduled to be announced. The ministry noted that critical minerals play a pivotal role for both economic development and mineral security of the country. In light of the same, Mines and Minerals Development and Regulation Act was amended in 2023, where the central government was conferred the power to grant mineral concession on 24 critical and strategic minerals. Srinagar city of Jammu and Kashmir has been officially recognized as a World Crafts City by the World Crafts Council. This prestigious honor underscores the city's rich heritage and the exceptional skills of its artisans, whose dedication and artistry have earned global acclaim. Lieutenant Governor Manoj Sinha has expressed his heartfelt congratulations on this monumental achievement, stating that this recognition is a testament to the hard work and exceptional talent of the artisans. He emphasized that it validates their dedication and highlights the cultural richness of Srinagar. He also maintained that the government is committed to supporting artisans and ensuring that this accolade translates into tangible benefits for the community. Prime Minister Narendra Modi has shown steadfast support for Jammu and Kashmir's handicraft and handloom sector. He actively promotes the region's handicrafts by presenting souvenirs crafted by J&K artisans to world leaders, thereby enhancing global awareness and appreciation for the craftsmanship and cultural heritage of the region.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि दोबारा प्रयोग होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण परिसर में किया गया। इससे प्रक्षेपण लागत में कमी आएगी और भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी।
The Economic Offence Unit, EOU, of Bihar Police yesterday said that the NEET UG examination paper was leaked by a professional interstate organized gang from Hazirabad in Jharkhand. The EOU said that 13 members of this organized gang have been arrested by SIT, which is investigating the case. In a press statement issued yesterday, the EOU said the paper leak case occurred due to tampering in the standard operating procedure of transportation, storage, handover and takeover laid by the National Testing Agency or the NTA. The EOU said SOP was not followed at the examination center in Hazirabad in Jharkhand, which led to the question paper leak.
इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस वर्ष परीक्षा में कृपांक पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कल हुई, जिसमें सिर्फ 813 अभ्यर्थी शामिल हुए और 750 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। रूस में बंदूकधारियों ने काकेशस गणराज्य दागिस्तान में सिलसिलेवार हमले में 6 पुलिस अधिकारियों और एक पादरी की हत्या कर दी है। दागिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा कि हथियारबंद लोगों के एक समूह ने कैस्पियन सागर पर स्थित डर्बन शहर में एक धार्मिक स्थल और एक चर्च पर गोलीबारी की और मखचकला शहर में एक पुलिस चौकी पर भी हमला किया। उन्हें निशाना बनाया गया। हमलों में कम से कम 12 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार एक रूसी पादरी की भी हत्या कर दी गई है और 4 हमलावर मारे गए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल अरब सागर के कुछ और हिस्सों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिनों के दौरान बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों तक बहुत तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच आज और कल पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके बाद स्थिति में सुधार होगा।
And moving on to sports, Sir Ferozi. In ICC Men's T20 World Cup Cricket, India will play against Australia today in their Super 8 at the Darren Sammy National Cricket Stadium, Gross Islet, St. Lucia at 8 p.m. Indian time. In the 31 previous head-to-head meetings in T20 matches, India holds an advantage with 19 wins, while Australia has won just 11 such encounters and one match had ended in no result. Team India already defeated Afghanistan and Bangladesh in the Super 8 group with ease. So a third straight win for India will not only make them the group toppers and send them to the semi-finals, it will also substantially threaten Australia's chances of progressing through to the semis. In another match, West Indies will take on South Africa at the Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua at 6 a.m. IST. Earlier, defending champion England stormed into the semi-finals after smashing co-host USA by 10 wickets at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados last night.
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।
और अब चलते हैं महानगरों की ओर और जानते हैं वहां की हलचल। तो रेनु, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबर लाई हैं आप?
मैं बहुत कुछ लेके आई हूं सर फिरोजी। आई एम बिगनिंग विद चेन्नई मेट्रो फर्स्ट। रिवर्क्स ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विल कंटिन्यू इन टी नगर शॉपिंग हब एरिया एज मेनी प्लेसेज हैव बीन बैरिकेडेड एंड ट्रैफिक हैज बीन डायवर्टेड एंड इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर कम्यूटर्स। द ऑफिशियल सेड दैट 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन टनल्स बिटवीन पंगल पार्क एंड कोडम्बक्कम विल बी कम्प्लीटेड अलॉन्ग द पार्क। At Panagal Park, the tunnel will be around 8 meters in depth. It may gradually go deeper at 24 meters at Nandanam junctions, where tunnels will be below the existing Phase 1 tunnel. More news from Chennai. Chennai's T Nagar shopping hub area faces traffic diversions as tunnelling between Panagal and Boat Club is delayed by 1 year. Two tunnel boring machines were currently building tunnels between Panagal Park and Kodambakkam for the 45.4 kilometer corridor 3 of phase 2. State Minister K.N. Nehru said that the state has proposed to merge Ponnamalli, Thiruverkadu, Thiru Indvarur and Madukkari municipalities with nearby corporations. A total of 13 town panchayats will be upgraded into 11 municipalities and a new municipality would be formed by merging 8 panchayats. This would take the total number of municipalities in the state to 149. The number of existing town panchayats, which was around 490, would go up to 700 with the merging of the eligible panchayats. Moving on to Bengaluru, World Karate Day was inaugurated in Mysuru yesterday by the City Police Commissioner Ramesh Banot. The event organized by Mysuru Karate Association had Karate for Self-Defense as its theme. Ramesh Banot said that it is essential for girls to learn self-defense not only to defend themselves but for keeping themselves healthy and physically fit. He noted that martial arts helps build self-confidence and self-esteem in the society. Around 1500 karate kids from different karate schools participated in the event. The event held at the University of Mysore hockey grounds enthralled the audience by the display of skills in a self-defense karate by the children learning the martial arts. Moving on to Telangana, the news from Hyderabad Metro. The Telangana state government is planning to modernize government schools and residential schools. The government has taken an initiative for establishing SC, ST, BC and minority Gurukul schools under a single roof at an integrated residential school campus. The integrated campuses will be constructed in all assembly constituencies in the state. The construction of integrated campuses will be taken up in Kodungal and Madhira assembly constituencies on pilot basis initially. Later, these campuses will be established in all the constituencies in a phased manner. Chief Minister Revanth Reddy, Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka and State Chief Secretary Santi Kumari reviewed the establishment of integrated residential schools with officials concerned yesterday in Hyderabad. They examined designs for these integrated schools submitted by architects. Besides classrooms, school campuses will be constructed as advanced educational institutions on par with international schools. The integrated residential schools will provide all facilities to students. Officials have been asked to design and construct school campuses based on land availability. Each integrated Gurukul complex will be built on an area of about 20 to 25 acres. Aur ab aapke paas chalte hain sir Firozi, let's have some metro news from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji bilkul, shuruaat kar rahe hain Delhi se, jahan jal sankat ko lekar Delhi ki jal mantri Aatishi ki anishchitkaleen bhookh hartaal kal teesre din bhi jari rahi. Unhone kaha ki Haryana sarkar dwara Delhi ko lagbhag 113 MGD pani kam diya ja raha hai, jis karan Delhi vasiyon ko pani ki killat ka samna karna pad raha hai. Jal mantri ne aarop lagaya hai ki Haryana sarkar ne Hathni Kund Bairaj से दिल्ली को आने वाला पानी बंद कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने नशामुक्त भारत पखवाड़े के तहत कल राजधानी के इंडिया गेट पर एक वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रणविजय सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है और हमारा कर्तव्य है कि हम नशा मुक्त वातावरण बनाएं। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे आज से अंबाला और सहरसा के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी अंबाला कैंट से शाम के 7:45 पर सहरसा के लिए प्रस्थान करेगी और बुधवार को सुबह 4:15 पर पहुंचेगी। रास्ते में ये रेलगाड़ी सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जंक्शन पर रुकेगी। ये रेलगाड़ी सिर्फ एक ही फेरा लगाएगी और इसमें शयनयान और सामान्य डिब्बे होंगे। अब चल रहे हैं मुंबई, जहां नवाचार और यात्री संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने और उनके यात्रा अनुभव में सुधार लाने के लिए कई यात्री केंद्रित कार्यों के लिए 2,206 करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना की घोषणा की है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि पश्चिम रेलवे का लक्ष्य 11,70,00,000 रुपए के खर्च के साथ दिव्यांगजन अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसके तहत कई कार्यों की योजना बनाई गई है, जिसमें व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और चलने फिरने में अक्षम यात्रियों के लिए आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रैम्प और रेलिंग लगाना शामिल है। दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेशन के प्रवेश द्वारों के पास विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालय और पीने के पानी के बूथ और आरक्षित पार्किंग स्थान प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुंबई में प्रतिष्ठित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीप कमल फाउंडेशन ने देश में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने और दिवंगत राजनेता और बैरिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इससे पहले मुंबई में प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर भी गए। और अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य के सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। ये राज्य कैबिनेट की 56वीं बैठक होगी। इस दौरान राज्य में सभी लंबित कार्यों पर चर्चा की जाएगी और नई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने के सुझाव भी दिए जाएंगे। और अब लेते हैं महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। यहां तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री पर रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और बेहद तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर रहने की संभावना है। और रेनु, आपके पास क्या जानकारी है मौसम की?
यस, आई हैव लॉट्स इन द वेदर। Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is also expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और अब श्रोताओं, आपको ले चलते हैं वक्त में थोड़ा पीछे और जानते हैं आज यानी 24 जून से जुड़ी कुछ घटनाएं। तो रेनू, कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
आई एम बिगनिंग विद द ईयर 1763 सर फिरोजी। तो आज के दिन इन द ईयर 1763 मुर्शिदाबाद वॉज कैप्चर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर मेजर एडम्स फॉर द सेकेंड टाइम एंड मीर जाफर वॉज डिक्लेयर्ड द किंग।
और 1793 में आज ही के दिन फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान अपनाया।
In 1813, the Battle of Beaver Dams, a British and Indian combined force defeats the United States Army. On the same day in 1922, the American Professional Football Association is renamed the National Football League. In 1961, on 24th of June, Indian manufactured supersonic fighter HF-24 took to air for the first time.
Or 1963 में आज ही के दिन डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की और 1966 में आज ही मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान के स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लैंक में दुर्घटनाग्रस्त होने से 117 लोगों की मौत हो गई। 1974 में आज ही के दिन भारतीय टीम लॉर्डर्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर सिमटी। ये टेस्ट में भारत का न्यूनतम स्कोर है और भारत ये टेस्ट मैच पारी 285 रन से हार गया था।
In 1986, the government announced that unmarried mothers under its employment would also get maternity leave. In 1990, on this day, the defense scientists successfully test-fired country's first third-generation anti-tank missile, NAG.
और 2005 में आज ही के दिन भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने का न्योता मिला।
And in 2005, India's claim for permanent membership of the Security Council was recognized by the US.
और 2006 में फिलीपींस में आज के दिन मौत की सजा को खत्म करने का ऐलान किया गया। 2010 में विंबलडन में आज ही के दिन टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे और 5 मिनट तक चला। ये ऐतिहासिक मैच अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस माहूत के बीच खेला गया था। और अब श्रोताओं, वक्त है उन हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन दुनिया में आए या हमसे विदा हुए।
यस सर फिरोजी, आई एम बिगनिंग विद श्रद्धा राम फिलोरी। वी आर रिमेम्बरिंग हिम टुडे, इट इज हिज बर्थ एनिवर्सरी, हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे। He was an Indian writer, poet and social reformer who is remembered for his contributions to Hindi and Punjabi literature. He is best known for his Hindu religious hymn Om Jai Jagdish Hare and Bhagyavati, one of the first Hindi novels. Filori has also been called the father of modern Punjabi prose. Born in Filori, he visited cities across Punjab and died in Lahore in 1881. In 1886, Sikha De Raj Di Vitha, that is Punjabi, the story of Sikh rule, he published an account of Sikh religion and the rule of Maharaja Ranjit Singh. Shraddha Ram has recently been acknowledged as having written the first novel in Hindi. His novel Bhagyavati, believed to have been written mainly in Amritsar, was first published in 1888 after Shraddha Ram's death. The novel's portrayal of women and women's rights was progressive for the day. Shraddha Ram has written the famous and widely sung aarti Om Jai Jagdish Hare. So kyun na hum is aarti ko
bilkul. और आज ही पुण्यतिथि है अवधानम सीतारमण की। ये भारतीय लेखक और पत्रकार थे। साहित्यिक और सांस्कृतिक त्रैमासिक त्रिवेणी जैसे अंग्रेजी और तेलुगु प्रकाशनों में इन्होंने स्वतंत्र योगदान दिया। अवधानम सीतारमण ने लंदन की पत्रिका द स्टूडियो में एक कला सलाहकार के रूप में भी काम किया। इन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में संपादक के तौर पर भी काम किया। अवधानम सीतारमण को भारत सरकार द्वारा 2001 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आज ही पुण्यतिथि है रानी दुर्गावती की, जो गोंडवाना की शासक थी और भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला, उसका इतिहासकारों ने काफी विस्तार से वर्णन किया है। आईनाए अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी।
And today is the death anniversary of Sanjukta Panigrahi, who was a dancer from India, who was the foremost exponent of Indian classical dance, Odissi. Sanjukta was the first Odia woman to embrace this ancient classical dance at an early age and ensure its grand revival. In recognition of her contribution to dancing and associated activities, she was honored with one of the greatest civilian awards, the Padma Shri, in 1975.
और अब बात कर रहे हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की, जिनका आज जन्मदिवस है, जयंती है। भारत के ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। यहां तक कि किशोर अवस्था में ओंकारनाथ जी को अपने पिता और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए एक मिल में नौकरी करनी पड़ी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की कालजयी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना है वंदे मातरम। और रेणु, ये कमाल की बात है कि बहुत सारे हमारे देश की हस्तियों का इतिहास हमारे संस्थान आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है।
अच्छा
जी, बिल्कुल। जैसे कि आप इसी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ही को ले लीजिए। इनका 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से इनके राग देश में निबद्ध वंदे मातरम के गायन का लाइव प्रसारण हुआ था।
तो क्या आप ही हमें सुनवाएंगे?
बिल्कुल। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मार्तंड, संगीत महामहोदय और पद्मश्री की उपाधियों और इसके अलावा अनगिनत पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया।
And today is the birthday of Anita Desai, FRSL, born Anita Mazumdar, who is an Indian novelist, and the Emerita John A. Boshard, Professor of Humanities at the Massachusetts Institute of Technology. As a writer, she has been shortlisted for the Booker Prize 3 times. She received a Sahitya Akademi Award in 1978 for her novel Fire on the Mountain from the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters, or Sarfirozi. 2014 mein inhe Padma Bhushan से भी नवाजा गया था।
क्या बात।
एंड ऑल्सो टुडे इज द बर्थडे ऑफ लायनल आंद्रेस लियो मेसी, हु इज एन अर्जेंटाइन प्रोफेशनल फुटबॉलर हु प्लेज एज अ फॉरवर्ड फॉर एंड कैप्टन्स बोथ मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मायामी एंड द अर्जेंटीना नेशनल टीम। वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, मेसी हैज वन अ रिकॉर्ड 8 बलॉन ड्योर अवार्ड्स, a record 6 European Golden Shoes, and was named the world's best player for a record 8 times for FIFA.
और एक और खिलाड़ी जिनका आज जन्मदिन है, हम बात कर रहे हैं महक जैन की, जो भारतीय पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ये जॉर्जिया टेक येलो जैकेट्स के लिए कॉलेज टेनिस खेलती हैं। महक की महिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा 511 की करियर उच्च एकल रैंकिंग दी गई है, जो 18 फरवरी 2019 को इन्होंने हासिल की थी। और अपने करियर के दौरान इन्होंने ITF महिला सर्किट पर 2 एकल खिताब और 1 युगल खिताब जीता।
And today is the birthday of Vijay Shanti, who is an Indian actress, film producer and politician, and a film career spanning 40 years. She has acted in 187 feature films in a variety of roles in various languages, predominantly in Telugu films, in addition to Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam films. And in 1989, she was introduced to Hindi cinema by K. Vishwanath alongside Anil Kapoor in the film Ishwar. तो इसी मूवी का एक गाना सुन लेते हैं।
और दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और रेनु कटारिया को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।